हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहाँ सामने बैठे वेदांश की नज़रें खुद पर ही जमी हुई देखकर अंबिका वॉशरूम के दरवाजे पर ही रुक गई। पता नहीं क्यों, लेकिन वो आगे नहीं आ पाई। उसने अभी भी अपने हाथों में तौलिया पकड़ा हुआ था। उसे ऐसे रुकते देखकर वेदांश ने कहा, ऐसे क्या घबरा रही हो, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। अंबिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो वेदांश की इस बात का क्या जवाब दे, इसलिए वो थोड़ा अटकते हुए बोली, नहीं नहीं, वो मैं बस, तुम अभी यहाँ नहीं थे ना थोड़ी देर पहले, तो बस। वेदांश काफी एटीट्यूड से बोला, हाँ तो मेरा कमरा है, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी इस बात पर अंबिका ने कुछ नहीं कहा। वो उससे बहस नहीं करना चाहती थी और उसे नहीं पता था कि वो क्या बात ऐसी बोल दे जो वेदांश को बुरी लग जाए और वो फिर से उसे धमकी देने लगे उसके घर वालों को लेकर। इसलिए अंबिका ने चुप रहना ही ठीक समझा। उसी तरह अपने बाल पोंछते हुए वो थोड़ा आगे आई और वहां बैठकर एकदम कोने पर वेदांश से काफी दूर होकर बैठ गई। वेदांश वहां टेबल के सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था अपने पैर क्रॉस करके, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी अंबिका पर ही टिकी हुई थीं। वेदांश एकदम अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ आया। अंबिका ने उसे अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, लेकिन जानबूझकर वो अनजान बनने का नाटक करते हुए दूसरी तरफ देख रही थी। अंबिका ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और अपने मन में कहा, अब इसे क्या हो गया, अचानक से ये इधर ही क्यों आ रहा है। हे भगवान, प्लीज बचाना मुझे इस शैतान से, पता नहीं क्या चलता है इसके दिमाग में। इससे पहले कि अंबिका अपने मन में कुछ और सोच पाती, वेदांश ने उसकी बांह को एकदम कसकर पकड़ते हुए एक झटके से उसे अपनी तरफ घुमाया। उसके ऐसा करने पर उसके खुले हुए गीले बाल उसके चेहरे पर आ गए, तो वेदांश ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए पीछे करने लगा। वेदांश की उंगलियों का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस करते हुए अंबिका को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें एकदम गले में अटक गई हों और वो ना तो वेदांश को कुछ बोल पाई और ना ही उसे ऐसा करने से रोक पाई, बस एकटक उसकी तरफ ही देखती रही। वेदांश का चेहरा अब तक उसके चेहरे के एकदम नज़दीक आ चुका था और अंबिका ने कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि तभी वेदांश ने अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसकी बोलती बंद कर दी और उसे काफी ज्यादा पैशनेट होकर डीपली किस करने लगा। वेदांश के होंठ बहुत ही रफली उसके होंठों पर चल रहे थे और एकदम अचानक से उसके ऐसे किस करने पर अंबिका पहले तो थोड़ा हैरान रह गई, लेकिन कुछ देर बाद उसकी पलकें भी नीचे झुक गईं और पता नहीं क्यों आखिर उसने भी वेदांश का साथ देते हुए एक बार ही सही लेकिन हल्के से उसके होंठों को चूम लिया। उसके ऐसा करने पर वेदांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो और भी ज्यादा पैशनेट होकर उसे किस करने लगा। आखिर उसने अंबिका के निचले होंठों पर हल्के से बाइट कर लिया, जिसकी वजह से अंबिका के मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली, आह, और उसने वेदांश का हाथ एकदम कस कर पकड़ लिया और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी पकड़ वेदांश के हाथ पर इतनी मजबूत हो गई कि वो वेदांश के कंधे पर अपने नाखून एकदम कस कर गड़ाने लगी। वेदांश इस चीज को एंजॉय कर रहा था और कुछ देर बाद उसने अंबिका के होंठों को छोड़ा। अंबिका को तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी, वो काफी गहरी सांस भर रही थी, लेकिन वेदांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और वो अंबिका की तरफ ही देख रहा था। वेदांश ने अंबिका के चेहरे की तरफ काफी गौर से देखा तो उसे अंबिका के होंठों पर हल्के से खून की कुछ बूंदें नजर आईं, जो कि उसके रफ बाइट की वजह से ही थीं। उसने अपना अंगूठा आगे बढ़ाया और अंबिका के होंठों पर टच करने वाला था कि तभी अंबिका ने हल्का सा अपना सिर पीछे कर लिया, लेकिन वेदांश ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाया और अंबिका के होंठों पर लगे हुए खून की बूंदों को अपने अंगूठे से रगड़कर साफ किया, तो अंबिका हैरानी से मुंह खोलकर उसके तरफ ही देखने लगी। और तभी वेदांश ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद अंबिका को उम्मीद भी नहीं थी। वेदांश ने अंगूठे को अपने मुंह के अंदर डालते हुए उस पर लगे हुए ब्लड की ड्रॉप्स को चाट लिया। उसके ऐसा करने पर अंबिका की आंखें हैरानी से और भी ज्यादा चौड़ी हो गईं और ऐसा लग रहा था उसकी आंखें अभी बाहर ही निकल आएंगी। वो तुरंत ही डिस्गस्टिंग फेस बनाते हुए बोली, छी, ये क्या कर रहे हो तुम? यकीनन कितने गंदे हो तुम! वेदांश को इस तरह अपने होठों पर लगे हुए ब्लड की ड्रॉप्स चाटते हुए देखकर अंबिका को बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ, और वो जैसे ही ये बात बोली तो वेदांश ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कहीं ज्यादा कुछ कर चुके हैं हम, और तुम्हें ये गंदा लग रहा है? सीरियसली, वैसे चाहो तो तुम भी ट्राई कर सकती हो। वेदांश ने जैसे ही ये बात बोली, सोचकर ही अंबिका को ऐसा लगा जैसे उसे अभी उल्टी हो जाएगी। उसने तुरंत ही वेदांश को खुद से दूर पुश करने के लिए उसकी चेस्ट पर हाथ रखा, और वो उसे पीछे की तरफ धकेल पाती उससे पहले ही वेदांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने एकदम करीब खींचकर बोला, इतनी आसानी से तुमसे दूर तो नहीं जाने वाला हूँ मैं अब, इसलिए कोशिश भी मत करो। उसकी ये बात सुनकर अंबिका बहुत ज्यादा घबराते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम कहना क्या चाहते हो? वेदांश ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अंबिका की तरफ देखकर काफी मिस्टीरियस ढंग से मुस्कुराता हुआ उसके सामने ही खड़ा रहा, लेकिन उसके हाथ अंबिका की कमर पर हरकत कर रहे थे और अंबिका को उसका स्पर्श महसूस करके बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में गुदगुदी हो रही हो या फिर पेट में तितलियां उड़ रही हों। उसे खुद नहीं पता था कि उसे ऐसा महसूस क्यों हो रहा था, लेकिन वो वेदांश को इग्नोर करने की कोशिश में इधर उधर देख रही थी, और तभी वेदांश ने धीमी आवाज में उसके कान में कहा, खाना खा लो, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से जब हम फिजिकल हों तो तुम मुझे झेलने के लायक ही न बचो। उसने जैसे ही ये बात कही तो अंबिका ने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा, जैसे बहुत कुछ पूछना चाहती हो लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाई, और वेदांश ने जैसे ही उसे छोड़ा वो खुद ही उससे दूर वहाँ टेबल के पास आई और वहाँ प्लेट में रखा हुआ खाना उठाकर साइड में बेड पर बैठ गई। अंबिका को खुद भी काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी और उसे पता था अभी वो खाना खाने लगेगी तो फिर वेदांश ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, तो एक तरह से वो उसे इग्नोर करने के लिए भी खाना खा रही थी और जानबूझकर काफी धीरे धीरे खाना खा रही थी जिससे कि वेदांश इरिटेट होकर वहाँ से चला जाए। और वेदांश ये सब कुछ समझ रहा था, इसलिए उसने अंबिका की तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और वो फोन पर बात करते हुए कमरे की बालकनी में आ गया। तब जाकर अंबिका ने राहत की सांस ली और अपने आप से बोली, क्या है ये आदमी भी, पता नहीं क्या चाहता है और दूसरी बार से क्या मतलब था इसका, मैं इसे दूसरी बार अपने नजदीक नहीं आने दूंगी। अंबिका ने अपने आप से कहा और फिर से एक निवाला अपने मुंह में डाला और उसे चबाते हुए बालकनी की तरफ ही देखने लगी जहां पर खड़े हुए वेदांश की पीठ उसे नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंबिका का घर,
अक्षय को कुछ लोग वहां घर के दरवाजे पर छोड़कर गए थे और उसके बाद पड़ोसियों ने किसी तरह उसे घर के अंदर लिटाया था। उसके बाद डॉक्टर जाकर उसे चेक करके गए थे और काफी घंटे बाद उसे होश आया था, लेकिन फिर भी वो चलने फिरने की हालत में नहीं था। और आज दो दिन के बाद जब वो कुछ ठीक हुआ तो उसे अंबिका का ध्यान आया। देविका और उसके पापा पहले से ही काफी परेशान थे अंबिका के लिए और ऊपर से अक्षय की ऐसी हालत। अक्षय ने पास वाले पुलिस स्टेशन में जाकर अंबिका की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के बारे में सोचा। कहीं न कहीं उसे वेदांश पर ही शक था, लेकिन बिना किसी सबूत के वो सीधे उसका नाम नहीं ले सकता था क्योंकि उसे भी पता था वेदांश कितना बड़ा आदमी है, और अगर उसने ऐसा किया तो वो दोबारा फिर से उसे वहीं या कहीं और ले जाकर कैद कर लेगा या फिर शायद उसे जान से भी मार सकता है। ये सारी बातें अक्षय के दिमाग में थीं, इसलिए उसने सिर्फ अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेन ही लिखवाई और खुद अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे ढूंढने में लग गया। साथ में उसे मिशिका के बारे में भी कुछ नहीं पता था और वो उसके बारे में भी पता करने की कोशिश करने लगा। टू बी कंटिन्यूड। कैसा लगा आज का एपिसोड? ये स्टोरी मेरी बाकी सारी स्टोरीज से डिफरेंट है, इसलिए इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और अभी तो ज्यादातर लोगों को यही स्टोरी पसंद भी आ रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि शायद हमें भी यहाँ के लिए अपना लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज करना होगा, तो आगे आने वाली स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आपसे अभी हम सोच रहे हैं, वैसे कोई फैसला नहीं दिया है लेकिन ट्राई कर रहे हैं अब हम। अगर आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।